الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، آج کل ہم بڑی شخصیات کے بارے میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں علم اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور کی ہوئی تھی، اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے نہ کسی کی بڑائی کے فکر کی، نہ کسی کی طرف دیکھا کہ کون خلیفہ ہے، کون بادشاہ ہے، کون کتنے بڑے عہدے پہ ہے، نہ ان سے چمٹنے کی کوششیں کی، بلکہ اپنے علم اور تقویٰ کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری اور آج ان کے نام دنیا جانتی ہے. ان کے حسب نسب نے ان کو کوئی نقصان نہیں دیا. یہ وہ کس کی اولاد ہیں شاید دوگا جانتے بھی نہ ہوں، ہاں مگر ان کے تقویٰ کو ضرور جانتے ہیں، ان کے علم کو ضرور جانتے ہیں، ان کی نیکی، ان کی پارسائی ہم تک پہنچی ہے. آج ایک ایسی شخصیت ہے، ان سے ملاقات کرتے ہیں. ان کا نام ہے مالک بن دینار. زہد اور تقویٰ اور علم دین میں ان کا نام بہت بڑا ہے، مگر یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھے. ان کے والد بھی ایک غلام تھے اور ان کا نام دینار تھا. مالک بن دینار ایک سپاہی ہوتے تھے اور شراب کے بہت شوقین تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. ان کی زندگی صرف لہو و لعب میں گزرتی تھی، انٹرٹینمنٹ. ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اس سے ان کو بڑی محبت تھی، اور اس سے ہی ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا. اسے یہ بہت محبت کرتے تھے. جب بھی یہ شراب پیتے تھے تو بیٹی آتی، ان کی گود میں بیٹھتی اور شراب کے جام کو پیچھے دھکیل دیتی، اس کو گرا دیتی تھی. کہتے ہیں جب وہ ایسے کرتی تھی تو میں اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ چھوڑ دوں گا، مگر ابھی چھوڑی نہیں تھی. ایک دن بیٹی بیمار پڑ گئی، بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ یہ بچی ان کی زندگی کی بہار تھی، اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی. دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو اچھا کر دے، مگر بچی کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور آخر کار ایک دن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اس وقت بچی کی عمر کوئی 2-3 سال تھی، اور اتنا بچہ انسان کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اور یہ ویسے بھی بہت لاڈلی بچی تھی، تو ان کو انتہائی غم ہوا. ان سے برداشت نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا، ان کی زندگی پلٹ گئی، پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی. وہی شراب جس کو چھوڑنے کا انہوں نے سوچا تھا، دوبارہ اس میں چلے گئے، وہی پہلے والی برائیاں شروع کر دیں، کیونکہ صدمہ بڑا شدید تھا. خود کو شراب کے نشے میں دھت رکھتے تھے. ایک رات کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خوب شراب پی، اتنی پی کہ غنودگی طاری ہو گئی، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے، اور کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں بہت خوف زدہ ہوں، سب لوگ زندہ کر دیے گئے، زمین ہموار کر دی گئی ہے، اور مجھے فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پر لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کے ناموں سے پکار رہے ہیں. اتنے میں ایک فرشتے نے میرا نام پکارا، مالک ابن دینار کھڑے ہو جاؤ، تم پیش ہونے والے اللہ عز و جل کے سامنے. کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں اتنا خوف زدہ ہوا، ایک دم میں نے دیکھا سب لوگ غائب ہو گئے، اور میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا اژدہا، بڑا سانپ منہ کھولے ہوئے میری طرف بڑھ رہا. میں گھبرا گیا اور ڈر کے مارے بھاگنے لگا، وہ سانپ بھی میرا پیچھا کرنے لگا. میں بھاگ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں. जबकि वो मुसलसल मेरे पीछे है। इतने में मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। मैं भाग के उसके पास गया और उससे कहा कि मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे सांप से बचाओ। वो कहने लगा, मैं इतना कमजोर हूं, इतना बूढ़ा हूं और सांप इतना ताकतवर है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन के मैं तेज दौड़ा और फिर भागते भागते फिर दोबारा मेरे सामने वही आदमी आ गया। मैंने उससे कहा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, कुछ तो करो, ये मेरे पीछे है, ये मुझे निगल जाएगा। ये सुन के वो रोने लगा और बोला, मैं तो बहुत कमजोर हूं, बहुत बूढ़ा, मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, वो एक पहाड़ी है, तुम वहां भाग के चले जाओ, वहां मुसलमानों की अमानतें पड़ी हुई हैं, अगर तुम्हारी कोई चीज वहां अमानत रखी हुई हुई तो वो शायद तुम्हारी मदद करते। कहते मैं भागा पहाड़ी की तरफ और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो वहां मुझे छोटे छोटे बच्चे नजर आए, बहुत सारे बच्चे जमा थे, और इन्हीं में मेरी वो बेटी भी थी जो भागती भी मेरे पास आई और मेरे और सांप के दरमियान हायल हो गई। जब सांप आगे बढ़ता वो अपना हाथ उसके आगे कर देती और सांप रुक जाता, फिर उसने उसको इशारा किया तो वो वापस चला गया। कहते मैं इस कदर खौफजदा था, इतना थका हुआ था, मैं जमीन पे गिर गया। वो आई और मेरी गोद में बैठ गई, जैसे दुनिया में वो मेरी गोद में आके बैठा करती थी। मैंने इसे कहा, मेरी बेटी, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है? वो कहने लगी, अब्बा जान, क्या आपको नहीं पता, वो आमाल जो दुनिया में आप करते थे वो यहाँ आखरत में एक शक्ल में आ जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अमल भी तुम करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो सांप जो आपके पीछे था वो आपके बुरे आमाल थे, आपके गुनाह थे, जिनको आपने इतना ताकतवर कर दिया था, इतना कवि कर दिया था कि वो आपको तबाह करने वाले थे। और वो बूढ़ा कमजोर आदमी, वो आपके नेक आमाल थे जो इतने कमजोर थे कि वो आपके गुनाहों का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे, वो इसीलिए आपकी कोई मदद नहीं कर सके। और जब अल्लाह ताला ने ये देखा कि आप खुद को हलाक कर देंगे तो उसने मुझे आपसे छीन लिया जब मैं छोटी थी, ताकि आप सब्र करें मेरी मौत पर, और आपके सब्र की वजह से अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ कर दे और आपको जन्नत में दाखिल कर दे। फिर वो कहने लगी, अब्बा जान, अलम यानी लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान की ये आयत है सूरह हदीद की। क्या अब तक वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाए? कहते मैंने कहा, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, और मेरी आंख खुल गई और मैं यही कहता रहा। ये फजर का वक्त था। इस वक्त मैं उठा और मस्जिद का रुख किया। वहां पहुंचा तो इमाम यही तिलावत कर रहे थे, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल पिघल जाए अल्लाह के जिक्र से, जो हक उतर चुका है उससे नरम हो जाए। कहते हैं, उस दिन मालिक बिन दीनार की जिंदगी बदल गई। और ये वो मालिक बिन दीनार बन गए जिनको आज लोग याद करते हैं, मालिक बिन दीनार वो ताबई। इनकी जिंदगी के कुछ वाकयात आते हैं। जब ये नेक बन गए, जब ये पलट आए, तो एक दफा जा रहे थे बाजार में, एक बांदी देखी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी पुरकशिश। कहते मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगी, खेत तेरे जैसा फकीर मुझे खरीदेगा? बहुत किसी बड़े अमीर आदमी की बांदी थी और बहुत महंगी थी। तो इसने उस बांदी ने खादिम से कहा कि इसको पकड़ लो और लेके चलो आका के पास, इसका जरा तमाशा देखते हैं। तो उसका जो आका था वो तख्त पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि क्या कहते हो? कहते मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। सारी महफिल हंसने लगी। उसने कहा, आप इसको खरीदना चाहते हैं? ये तो बहुत महंगी है। आप इसके कितने पैसे देंगे? कहने लगे, वैसे तो ये बहुत सस्ती है, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा खजूर की दो गुठलियां दे सकता हूं, और वो भी वो गुठलियां जिनको चूस के फेंक दिया गया। सब हंसने लगे। उसके मालिक ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बात यह है कि इसमें आपको नहीं लगता कि ये बहुत बहुत कीमती है? फरमाने लगे, नहीं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, मैं इस वजह से ये कह रहा हूं। देखा, इसमें क्या खामी है? कहते खुशबू ना लगाए तो पसीने की बदबू आएगी इसमें, दांत साफ ना करे तो मुंह की बदबू से करीब बैठना मुश्किल हो जाएगा, कंघी ना करे तो सर में जुएं पड़ जाएंगी, और कुछ साल गुजर गए तो ये बूढ़ी हो जाएगी, और पेशाब पखाना वगैरह तो इसके साथ लगा हुआ है, गम इसमें है, दुख इसमें है, गुस्सा इसमें है, अपनी ख्वाहिश के लिए ये तुझसे मोहब्बत करती है, इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, गर्ज की मोहब्बत है, एक लौंडी मेरे पास भी है, क्या तुम उसको खरीदोगे? वो कहने लगा, वो कौन सी है? फरमाने लगे, वो मट्टी से नहीं बनी, वो मुश्क अंबर जाफरान काफूर से बनी, इसकी कलाई दुनिया के अंधेरों में आ जाए तो जमीनों के अंधेरे रोशन कर दे, उसकी कलाई सूरज को दिखाई जाए तो सूरज मांद पड़ जाए, समंदर में थूक दे तो समंदर मीठा हो जाए, जिंदा लोग एक नजर देख रहे हैं तो उनके कलेजे फट जाए, अपने दुपट्टे को हवा में लहरा दे तो सारे जहान में खुशबू फैल जाए। अल्लाह की जन्नत में वो परवान चढ़ी है और अपनी मोहब्बत में सच्ची है, वफा में पक्की है, ना हैज है, ना निफास है, ना पेशाब है, ना पखाना है, ना गुस्सा है, ना लड़ाई है, वो हमेशा राजी है, हमेशा जवान है और हमेशा साथ रहती है। अब बता, मेरी वाली ज्यादा बेहतर है या तेरी ये लौंडी? कहने लगा, जो आपने बताई वो बेहतर है, उसकी क्या कीमत है? फरमाने लगे, वो दो गुठलियों से भी ज्यादा सस्ती है, इसकी कीमत यह है कि तू अपने रब को राजी कर ले। मखलूक को राजी करना छोड़ दे, रब को राजी करना अपना मकसद बना ले, जब आधी रात गुजर जाए और सारे लोग सो जाएं तो उठ के दो रकत नमाज पढ़ना, ये इसकी कीमत है, जब खुद खाना खाने लगे तो गरीब को याद कर लेना, ये कर लेगा तो वो तेरी हो जाएगी। उस आदमी ने, मालदार आदमी ने अपनी बांदी से कहा, तूने सुन लिया? उसने कहा, हाँ। कहा, तू अल्लाह के नाम पे आजाद है, अपने नौकर भी आजाद कर लिए, अपना माल सदका कर दिया, और जुहद और तकवा में फिर आगे बढ़ गया, उसने तौबा कर ली। उस लौंडी ने भी तौबा कर ली, और इस तरह से इनके वाज़ और नसीहत से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली। इसी तरह एक दफा जा रहे थे, रास्ते में एक देखा, एक नौजवान है जो बैठा हुआ है और उसका आलीशान महल तामीर हो रहा है, वो अपने मजदूरों को हिदायत दे रहा है, ऐसे करो ये करो, तो मालिक बिन दीनार उस नौजवान को देख के फरमाने लगे, ये कितना हसीन नौजवान है और किस चीज में फंसा हुआ। तो जाफर बिन सुलेमान इनके साथ थे, वो कहते हैं, हम दोनों उसके पास गए, उसको पूछा इस महल के बारे में, उसने कहा ये मेरा है। मालिक ने कहा, तुमने इस मकान में, इस महल में कितना पैसा लगाया? उसने कहा, 1 लाख दिरहम। मालिक ने फरमाया, अगर तुम ये 1 लाख मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल का जिम्मा लेता हूं जो इससे बहुत बेहतर है, इसमें बहुत से खुदाम होंगे, खैमे होंगे, सुर्ख याकूत का होगा, मोती जड़े होंगे, उसकी मट्टी जाफरान की होगी, उसका गारा मुश्क का होगा, उसकी खुशबू महकती होगी, वो कभी पुराना नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, वो उसको कोई मजदूर नहीं बनाते, वो अल्लाह ताला के अमरे कुन से तैयार हो जाएगा। उसने कहा, अच्छा मुझे सोचने दे, मुझे एक दिन की मोहलत दे, कल आप आए तो मैं आपको बताऊंगा। मालिक वापस चले गए। रात भर इस नौजवान ने सोच में गुजारी। सुबह हुई तो मालिक बिन दिनार उसके महल पे गए। वो नौजवान दरवाजे पर ही इंतजार में बैठा हुआ था। इनको देख के खुश हो गया। मालिक ने फरमाया, तुम्हारी कल की बात के बारे में क्या राय है? उसने कहा, आप उस चीज को पूरा करेंगे जिसको कल आपने वादा किया? मालिक ने कहा, हाँ जरूर। उसने वो 1 लाख दिरहम जो है इनके सामने रख दिए और कलम ला के रख दिया कि इस पे मुझे लिख दे। मालिक बिन दिनार ने बिस्मिल्लाह लिखी और ये लिखा कि मैं इसके लिए जिम्मा लेता हूँ कि इसको जन्नत में महल मिले, और इसका 1 लाख दिरहम सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। 40 दिन भी नहीं गुजरे थे और उस नौजवान के मकान पे गए तो वहां पे स्याही का निशान था जो शोक की अलामत होती है, और रोने की आवाजें आ रही थी। तो पूछा तो पता चला वो नौजवान कल इंतकाल कर गया। सुभान अल्लाह, कैसे इनके वाज और कैसी इनकी नसीहतें थी कि लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। एक दफा बसरा के जंगल में जा रहे थे तो कहते मैंने सादान को देखा जो मजनून कहलाता था। मैंने उससे पूछा क्या हाल है? कहने लगा, ऐसे आदमी का हाल पूछते हो जो सुबह शाम हर वक्त एक लंबे सफर के लिए तैयार बैठा है, और सफर के लिए तोशा किसी किस्म का भी साथ नहीं है। कोई सफर का सामान सवारी इसके पास हो और उसको ऐसे मौला के पास जाना हो जो नहायत अदल वाला बड़ा करीम है, और वो लोगों के दरमियान उस वक्त फैसले करेगा। ना सामान सफर है, ना सवारी है, कुछ भी नहीं है उसके पास, और ऐसे रब के साथ उसको मिलना, ये कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगा। मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगा, मैं तो ना दुनिया के छूटने पे रो रहा हूँ, ना मौत से घबरा रहा हूँ, बल्कि अपनी उम्र के उस दिन पे रो रहा हूँ जब मैंने कोई नेक अमल नहीं किया। वो मेरा दिन जो नेक अमल से खाली था, मैं उसके ऊपर रो रहा हूँ। खुदा की कसम, मुझे अपने सामान सफर की कमी रुला रही है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और बड़ी मुशक्कत का है, इसमें बड़ी घाटियां हैं, और मेरे पास कोई सामान ही नहीं। और ये सारे सफर के मसाइब बर्दाश्त करने के बाद मुझे ये भी पता नहीं कि आखिर में मेरे लिए जन्नत है या जहन्नम। अल्लाह अकबर। मैंने आप इन लोगों की बातें देखी कि सुबहान अल्लाह, कैसे वाज और नसीहत एक दूसरे को किया करते थे। ये भी मालिक बिन दीनार भी हजरत हसन बसरी के जमाने के ही हैं। एक दफा फरमाते हैं लोगों से कि लोगों, तुम जिस कदर दुनिया का गम करोगे उतना ही आखरत का गम तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, और जितना तुम आखरत का गम करोगे उतना ही दुनिया का गम तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। और वाकई ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप जितना आखरत का गम करते हैं और जितनी उसकी फिक्र करेंगे, दुनिया के गम हल्के हो जाएंगे आपके लिए, और जितनी दुनिया के गम पाल लेंगे उतना ही आखरत का गम नजर से ओझल हो जाएगा। हजरत मुगीरा फरमाते हैं कि मैं मालिक बिन दीनार के पास गया और छुप के उनको देखने लगा। कई रातों तक मैंने उनको देखा, वो ईशा के बाद वुजू करते और नमाज के लिए खड़े हो जाते, कभी एक एक आयत को बार बार दोहराते रहते। जब सजदा करते, नमाज से फारिग होने का वक्त करीब हो जाता तो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ लेते और हजारों कतार रोते और दुआएं करते, ऐ इलाही मेरे मालिक, तू मेरी सरगोशियों का मदावा करने वाला, तू मेरी बीमारी से वाकिफ, अल्लाह तुझे पता है कि मैं जन्नत में जाने वाला हूं या जहन्नुम में जाने वाला हूं। तू मालिक के बुढ़ापे को दोजख पे हराम कर दे। तुझे पता है मालिक का घर कौन सा है? मुहिब अपने हबीब को अजाब नहीं देता, ऐ अल्लाह तू मुझे अजाब ना देना। इसी तरह सुबह होने तक ऐसे ही फरियादें करते रहते, इसी तरह रोते रहते। इनके बारे में आता है, ये इनके अंदर इतना ज्यादा खौफे खुदा इतना ज्यादा आखरत का की फिक्र थी कि फरमाते थे अगर मुझे कुछ मददगार मिल जाए तो मैं रात के वक्त बसरा के मीनार पे मुनादी कराऊं कि लोगों जहन्नुम की आग से बचो, लोगों जहन्नुम की आग से बचो। अल्लाह हू अकबर, मैंने कितना ज्यादा इनके अंदर खौफे खुदा था। अबू सुलेमान फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार रात के वक्त अपने शागिर्दों को घर में छोड़ के मकान के सहन में निकल गए, सुबह तक उसी जगह खड़े रहे। सुबह को शागिर्दों ने पूछा कि आप क्या करते रहे हैं रात भर सहन में खड़े में, कहते हैं मेरे दिल में दोजखियों का ख्याल आया और मुझे मेरे जैसे सामने वो मंजर घूम रहा था, सारी रात यही इन्हीं सोचों में रह के वो कैसे हथकड़ियों में कैसे जंजीरों में जकड़े होंगे, सुबह तक इसी सोच में रहा। अल्लाह हू अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज भी ऐसे ही, उनके बारे में भी यही आता है, वो भी अपने लोगों के साथ बैठे होते थे तो वो पूछते थे दरबारी के आपको क्या हो गया, आप किस सोच में हैं, आप बोलते क्यों नहीं, तो फरमाया करते थे कि जन्नतियों के मुतालिक मैं सोचता हूँ वो किस तरह एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होंगे, फिर मैं जहन्नमियों के मुतालिक सोचता हूँ वो कैसे चीखे मार मार के फरियाद कर रहे होंगे, फिर रो पड़ते थे। मालिक बिन दीनार के घर में एक दफा चोर आ गया, जब वो दीवार फलांग के आया उसको नहीं पता था कि घर में है, उसने इधर उधर सब जगह देखा कोई कीमती चीज ही नहीं मिली, तो एक कोने में ये नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने जब नमाज से सलाम फेरा तो उसको फरमाते हैं कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे जो काम का है, आओ मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही मायूस वापस नहीं भेजूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, जाओ जाके वुजू करो और 2 रकत नमाज पढ़ो। वो गया वुजू करके आया, 2 रकत नमाज पढ़ी, फरमाया अब तुम जा सकते हो, अब तुमने अल्लाह को खुश कर दिया। वो कहने लगा मैं अब नहीं जाता, मैं 2 और पढ़ लेता हूँ, फिर 2 पढ़ी उसने, तो फरमाया अब तुम जा सकते हो, कहने लगा नहीं मैं अब 2 और नफल पढ़ता हूँ। यही करते करते सुबह हो गई, फिर उसने कहा कि रात तो गुजर गई, मैं एक दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो एक दिन उसने इनके साथ गुजारा और उसके बाद वो चोर जो था चला जब गया तो उसके साथी ने पूछा तुम्हें कोई कीमती चीज हाथ लाए आई, कोई खजाना तुम्हें मिला, कहने लगा मैं चोरी करने गया था मालिक बिन दीनार के घर, अगर उल्टा उन्होंने मेरा दिल चोरी कर लिया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसने तौबा कर ली। एक दफा जाफर बिन सुलेमान के साथ हज के सफर पे ये निकले, जब लोग लब्बैक पुकारना शुरू हुए तो आप पे गशी तारी हो गई, होश में आने के बाद सुलेमान ने वजह पूछी तो फरमाने लगे मुझे डर लग रहा है कि ये ना हो कि मैं लब्बैक कहूं और आसमान से आवाज आ जाए तेरे लिए कोई लब्बैक नहीं, जब या कना वुदुआ या कनस्ताइन कहते थे तो मुस्तरिब होके रोने लगते थे, फरमाते थे हम ये कह तो रहे हैं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन हमने तो अपने नफ्स को माबूद बना लिया और दूसरों से मदद मांगते हैं। हशाम कहते हैं कि एक दफा मैं और मालिक बिन दीनार इमाम हसन बसरी के पास गए, वहां एक आदमी सूरह तूर की तिलावत कर रहा था, जब उसने पढ़ा इन्ना अजाबा रब्बी कल वाके मा लहू मिन दाफे, तेरे रब का अजाब जरूर वाके होने वाला, इसको दूर करने वाला कोई नहीं होगा, तो हसन बसरी रोने लगे, आपके साथी भी रोने लगे और मालिक बिन दीनार की ये हालत हो गई कि वो खौफे खुदा में ऐसा रोए कि बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। इन लोगों की जिंदगियां इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जो पहले से ऐसे नहीं थे, मगर हाँ इन्होंने अपनी जिंदगियों को बदला, हम ये नहीं कह सकते कि हम कैसे नेक हो सकते हैं, वो लोग तो ऐसे हुआ करते थे, वो तो ऐसे थे, हम कहाँ ऐसे हो सकते हैं, वो लोग हमेशा से तो ऐसे नहीं थे। आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने आपको वाक्यात सुनाए हैं, कैसे इन लोगों ने बिल्कुल चेंज कर लिया अपने आप को। तो वाकई इंसान अपने आप को बदल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी जहन्नम तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा तुमसे करीब है। इसका एक मतलब ये है कि इंसान का दिल ऐसा है कि कभी किसी रास्ते पे वो चल रहा है ना, अचानक कोई वाकया हो सकता है जिससे उसकी दिल की दुनिया बदल जाए। हो सकता है कभी बुराई पे चल रहा हो और ऐसा कोई वाकया हो कि वो नेकी की रास्ते पे आ जाए, जन्नत में चला जाए, तो जन्नत उसे बिल्कुल करीब है। और इसी तरह हो सकता है नेकी पे चल रहा हो लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसा वाकया हो जाए, दिल गाफिल हो जाए, दिल ही बदल जाए और वो जहन्नुम की तरफ चला जाए। तो जन्नत भी करीब है, जहन्नुम भी करीब है, इंसान किसको चूज करता है। हो सकता है आप में से किसी का दिल पलट जाए इस रमजान के बाद। हो सकता है आप कहें कि वो रमजान आया था और उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह अकबर। और वाकई इंसान के लिए अमल ही है जो उसको आगे लेकर जाता है। अबू मूसा खालानी अपनी बीवी से फरमाया करते थे, अबू ए नेकबख्त, अपना सामाने सफर बांध ले, जहन्नुम के पुल पे तुम्हें कोई पार कराने वाला नहीं होगा। यानी अपना अमल मजबूत कर लो, अपना सामान्य सफर बांध लो, वहां पे कोई हेल्प नहीं होगी, खुद हमें अपनी हेल्प करनी है। हजरत हसन बसरी फरमाते थे, जो भी उस खैर यानी जन्नत का तलबगार होगा वह खूब मेहनत करेगा हत्ता कि लागर हो जाएगा, और मुसलसल इस्तेकामत जम के काम करेगा हत्ता कि अल्लाह ताला से मुलाकात कर ले। तो वाकई इंसान को तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक उसकी अल्लाह ताला से मुलाकात ना हो जाए। दुनिया से जाने तक इस रास्ते को पकड़े रखना है, इस्तकामत से इसके ऊपर चलते रहना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में आखिरी अशरा देखने वाले हैं। उस अशरे में जो लोग इतकाफ बैठना चाहें वो अपने अभी से इसके लिए इंतजाम करें, अपनी मस्जिद वालों से पता करें, मस्जिद में ही इतकाफ होता है। और जब इतकाफ बैठना होगा, मसनून इतकाफ तो 10 दिन का, जो फारिगुल बाल खवातीन है, कोई घर की जिम्मेदारियां है सच नहीं है, वो बैठ सकती हैं। तो जिस दिन बैठना, जैसे 21वीं तारीख से अगर बैठना तो उसकी फजर पढ़ के मस्जिद में और फिर वहीं पे बैठ जाया जाए और फिर ईद का चांद देख के उठा जाए। इसके अलावा जो इतना नहीं कर सकता तो एक दिन और रात का भी इतकाफ होता है, लेकिन घर में इतकाफ नहीं होता। उम्मातुल मोमिनीन ने भी मस्जिद में ही किया था, हालांकि उनके हुजरे मस्जिद के साथ अटैच थे तो वो कह सकती थी हमारे तो हुजरे मस्जिद का हिस्सा ही है, हम यहीं बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो कर सकते हैं वो करें। और इसी तरह आपको मैंने सुन्नतें मौकेदा और गैर मौकेदा भी बताई थी दिन में, यानी 12 सुन्नतें ऐसी हैं जो मौकेदा हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनको उनकी पाबंदी की है। तो वो 12 सुन्नतें, 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, इसी तरह मगरिब के बाद 2, और इसी तरह ईशा के बाद 2। तो ये जो 12 सुन्नतें हैं ये जब इंसान अदा करता है तो जो इसके पाबंदी से अदा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। इसके अलावा गैर मौकेदा सुन्नतें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप असर और मगरिब से पहले जो सुन्नतें पढ़ेंगे, असर से पहले 4 और मगरिब से पहले 2, तो वो गैर मौकेदा सुन्नतें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं किया, कभी कभी पढ़ ली। इन्हीं के अंदर एक जुहर के बाद 4 रकत हैं, यानी आप 2 पढ़ते हैं ना, 2 और 2 भी पढ़ लें तो 4 हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जोहर से के बाद, जोहर से पहले भी 4 रकत पढ़ी और उसके बाद भी 4 रकत की पाबंदी की, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को हराम कर देगा। इसीलिए जो लोग 2 सुन्नत फर्जों के बाद पढ़ते हैं और उसके बाद 2 नफल पढ़ते हैं, तो वो वही चीज हो गई। अगर आप वो 2 नफल भी पढ़ते हैं तो वही बात है, ठीक है। दो दो करके हम 2 पढ़ रहे होते हैं, उसको फिर जारी रखें। इसी तरह सजदे में दुआ जरूर किया करें, चाहे कोई भी दुआ कर लें, लेकिन सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। और मैंने आपको पहले भी 2-3 दुआएं बताई थी जो हमारे असलाफ अपने सजदों में किया करते थे, उनकी पाबंदी करते थे। तो जितनी भी दुआएं हम आजकल देख रहे हैं, ये सारी दुआएं आप कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा वाली सारी दुआएं आप कर सकते हैं। जो रब्बना वाली हैं वो कुरानी दुआएं हैं, रब्बी रब्बना, उनको वैसे कुरान आप सजदे में नहीं पढ़ सकते। बाज़ उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि ये दुआ के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर रब्बना की जगह अल्लाहुम्मा कर दे, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी एहतियात की खातिर, और आप दुआ भी कर लेंगे। तो जितनी आपको दुआएं रब्बना वाली आती हैं उनको आप अल्लाहुम्मा करके फिर उनको इंशाल्लाह सजदे में आप मांग सकते हैं। आज की जो दुआ है बड़ी अहम दुआ है, इसमें सारी खैर आ जाती है और हर शर से बचाव आ जाता है। इसलिए जब आपको को बहुत डिटेल में दुआ नहीं भी मांगनी आए तो उस वक्त ये वाली दुआ कर लिया करें, और वो दुआ नंबर 8 पे है PDF में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही, अल्लाह मैं तुझसे सारी खैर का सवाल करती हूँ, कुल्ली सारी खैर का, आजली ही व आजली, जल्दी मिलने वाली और देर से मिलने वाली, यानी दुनिया में जो खैर है वो जल्दी मिलने वाली है, जो आखरत में खैर है वो बाद में मिलने वाली है। मा आलिम तु मिन हूँ व मा लम आलम, अल्लाह जो खैर मैं जानती हूँ और जो नहीं जानती, अल्लाह हर तरह की खैर का मैं सवाल करती हूँ, दुनिया की भी भलाइयाँ और आखरत की भी भलाइयाँ, तो इसमें सारी भलाइयाँ आ गई ना। वाउजु बिका मिन अश्शर्रि कुल्लिही, और अल्लाह हर शर से मैं तेरी पनाह में आती हूँ, हर शर से, आज ली वो आज ली, जो जल्दी मिल आने वाला हो या देर से आने वाला हो, यानी दुनिया का शर भी और आखरत का शर भी। मा आलिम तुम इन हुआ मा लम आलम, बहुत सारे शर हैं हम उनको जानते भी नहीं है, क्या क्या शर हो सकते हैं, हम से मांगे नहीं जाता कि अल्लाह हमें इस चीज से बचा ले, इससे बचा ले, बहुत सारे शर हैं, हमें क्या पता कौन सा शर किस वक्त हमारी तरफ बढ़ रहा। तो अल्लाह जिसको मैं जानती हूँ और जिसको नहीं भी जानती है, अल्लाह उस शर से भी तू बचा लेना। तो बहुत ही ये खूबसूरत जामे दुआ है, बिल्कुल एक दुआ में सब कुछ आ गया, हर तरह की भलाई आपने मांग ली और हर तरह की बुराई से पनाह मांग ली। आज का जो जिक्र है वो बाजार जाने का जिक्र है, यानी जब आप बाजार जाएं ग्रोसरी शॉपिंग किसी चीज के लिए भी आप बाजार जाते हैं, तो आप अगर ये जिक्र कर लेंगे एक दफा ही बस कर लेंगे, तो 1 लाख नेकियां मिलेंगी और 1 लाख गुनाह माफ हो जाएंगे और 1 लाख दर्जात बुलंद होंगे। इतना ज्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि बाजार में गफलत होती है, इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है, बहुत ही कम कोई लोग होते हैं जो अल्लाह ताला को याद रखे बाजार जाके। तो ये जिक्र भी बहुत प्यारा है और आपको इसमें से काफी तो आता ही है, ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें एडिशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत, बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो बीच में थोड़ा सा इजाफा, बाकी सारा वही है। तो इस जिक्र को आप या तो लिख के अपने पर्स में रख लें ताकि जब आप बाजार जाएं तो आपने निकाल के देख लिया, और अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और इसको फिर कहना भी याद रखिएगा कि जब हम बाजार जाएं तो हमें याद भी रहे कि हमने ये जिक्र करना है। तो मुफ्त में कितनी सारी नेकियां हमें मिल सकती हैं और कितने सारे हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं और कितने सारे हमारे दर्जात बुलंद हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ये तमाम बातें याद रख सकें, और अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को अपनी रजा वाली जिंदगी बना ले। और जो ये मैंने आपको सुन्नतें बताई हैं, तो जितनी भी आप 4 सुन्नतें पढ़ेंगे वो 2-2 करके पढ़ेंगे, ठीक है। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.